ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद पांचवा अध्याय चौबीसवा अध्याय का नाम है नीचे के स्वर्गीय लोकों का वर्णन और श्लोक संख्या है 21। तुम मेरे पीछे बोलिए। तन भक्तानां आत्मवतां सर्वेषां आत्मन्यात्मद आत्मतयैव तन भक्तानां आत्मवतां सर्वेषां आत्मन्यात्मद आत्मतयैव। अब शब्दार्थ बोलेंगे। तत् वह भक्तानां भक्तों का आत्मवतां सनक तथा सनातन जैसे आत्मज्ञानी पुरुषों का सर्वेषां सबों का आत्मनि आत्मारूप श्री भगवान तक आत्मदे जो बिना हिचक के अपने आप को दे देता है आत्मतया जो परम आत्मा है परमात्मा एव निस्संदेह। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। प्रत्येक प्राणी के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित श्री भगवान नारद मुनि जैसे भक्तों के हाथों बिक जाते हैं। दूसरे शब्दों में परमेश्वर ऐसे ही भक्तों को प्यार करते हैं और जो उन्हें शुद्ध भाव से प्यार करते हैं वे उनके हाथों अपने आप को सौंप देते हैं। यहाँ तक कि महान आत्म साक्षात्कार करने वाले योगी यथा चारों कुमार भी अपने अंतर में परमात्मा का साक्षात्कार करके दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले इस श्लोक को समझेंगे। इस श्लोक में शब्द क्या है ये जो बात है ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, है ना। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं क्या कह रहे हैं। तद भक्ता नाम नहीं नहीं अब आपको दोहराना नहीं है, मैं इसको समझा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तद भक्ता नाम, तत् का मतलब है उनका, है ना। तद भक्ता नाम आत्मवताम, है तो एक तो है भक्त, भगवान के भक्त हैं, दूसरे हैं आत्मवताम आत्मवान। तो आत्मवान का मतलब है जो हृदय में ध्यान करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, है ना। तो हृदय में आत्मा भी है और परमात्मा भी है। तो यहाँ पर दो प्रकार के लोगों की बात बताई गई है। एक तो है भक्ता नाम, भगवान के भक्त हैं, दूसरे हैं आत्मवताम आत्मवान, है ना। तो अनुवाद में प्रभुपाद भक्तों का उदाहरण दे रहे हैं नारद जी। इस श्लोक का जो अनुवाद है ये भी एक छोटा सा तात्पर्य ही है, है? तो अनुवाद में ही प्रभुपाद भक्तों का उदाहरण दे रहे हैं नारद मुनि, ठीक है। और आत्मवताम का उदाहरण दे रहे हैं चार कुमार। तो चार कुमार हैं ये हृदय में भगवान का ध्यान करते हैं। और नारद मुनि भगवान के भक्त हैं और चार कुमार जो है आत्मवान भक्त हैं। तो भक्ति तो उनकी ही भी है, चारों कुमारों में भी भक्ति है, लेकिन उनकी भक्ति ज्यादा केंद्रित होती है हृदय में स्थित भगवान पर, और नारद जी की जो भक्ति है वो ज्यादा केंद्रित होती है भगवान जो सामने आते हैं, है ना। तो दो प्रकार के लोग हैं, एक तो हैं भक्त हैं, दूसरे हैं आत्मवान, है ना। तो बहुवचन है भक्तानाम, और आत्मवान का बहुवचन है आत्मवताम। सर्वेशाम, हाँ, तो इन सभी में जो है हाँ, इसमें शब्दार्थ में बताया आत्मवताम सनक था सनातन जैसे आत्मज्ञानी पुरुषों का, है ना। सर्वेशाम सबों का, आत्मनि मतलब भगवान जो है आत्मद वो अपने को देने वाले हैं, भगवान अपने को ही दे देते हैं। तो भगवान के पास देने के लिए कुछ नहीं रहता, अपने को ही देते हैं, क्योंकि आत्मतैव, क्योंकि वे आत्मा ही हैं, वे चूंकि आत्मा ही हैं उनमें और कुछ है ही नहीं। भगवान में जो है प्रकृति का कोई संपर्क नहीं, भौतिक प्रकृति का कोई संपर्क नहीं है। ये भौतिक संसार में जो है जैसे सृष्टि में जैसे ब्रह्मा जी हैं तो उनका संपर्क भौतिक प्रकृति के साथ है, उनके शरीर में भी जो है पूरा आध्यात्मिक नहीं है, ब्रह्मा जी का शरीर आध्यात्मिक नहीं है, भौतिक शरीर है। शिव जी का भी जो शरीर है पूरी तरह से आध्यात्मिक नहीं है, उसमें भी भौतिकता है ना। लेकिन जो कृष्ण हैं तो उनके शरीर में भौतिकता है ही नहीं, बिल्कुल पूर्ण रूप से आत्मा है कृष्ण में जो है, मतलब कृष्ण के शरीर में कोई भौतिकता है ही नहीं जरा भी, 100% क्या है, आत्मा है, है ना। उनके शरीर और आत्मा में अंतर नहीं है, है ना। कल शाम को ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर में जो गीता का श्लोक हुआ था तो वो 9वें अध्याय का 34वां श्लोक हुआ था, तो उसमें मन मनाभव, जब भगवान के मन मनाभव कि मेरे मन वाले हो, तो प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं कि जो निराकारवादी होते हैं तो वे जो है चूंकि कृष्ण के आकार को भौतिक मानते हैं, तो जहां कृष्ण कहते हैं कि मेरे मन वाले हो तो वे जो है मन को पकड़ते हैं कि कृष्ण का जो मन है वो निराकार है, तो शरीर कृष्ण के शरीर को छोड़ करके कृष्ण के मन को वो मानना चाहते हैं, हम कृष्ण के मन को हम मानेंगे। कृष्ण कह रहे हैं कि मन मनाओ मेरे मन को समझो, तो मन निराकार है और शरीर आकार है, शरीर का आकार है, तो वो जो है शरीर को छोड़ना चाहते हैं और कृष्ण के मन को पकड़ना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जो है उनकी बहुत निंदा करते हैं, प्रभुपाद ने पूरे तात्पर्य उनकी बहुत निंदा की है कि जो लोग कृष्ण के मन को जो है निराकार मान करके उसको महत्व देते हैं और कृष्ण के शरीर को साकार मान करके महत्व नहीं देते, शरीर को छोड़ो कृष्ण के मन को हम जो है केवल मानेंगे हम, है ना। तो निराकार की शरण लेना चाहते हैं तो प्रभुपाद बड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि कृष्ण का जो शरीर है ये क्या है, सच्चिदानंद विग्रह, उसमें शरीर में आत्मा में और मन में कुछ अंतर ही नहीं है, उनका वही शरीर जो है पूरा शरीर ही आत्मा भी है मन भी है सब कुछ है, हमारे शरीर में आत्मा अलग है मन अलग है शरीर अलग है, है ना। लेकिन कृष्ण में जो है मतलब ऐसी चीज है, अद्वैत तत्व है कृष्ण में, है ना। तो यहाँ पर बताया आत्मतैव कि कृष्ण जो है चूंकि आत्मा ही है पूर्ण रूप से आत्मा ही है, तो वे कोई चीज भौतिक तो देते ही नहीं है, वो अपने को ही देते हैं, उनके पास और कुछ देने के लिए कुछ है ही नहीं, है ना। तो यहाँ ये बताया गया है कि तन भक्तानाम आत्मवताम सर्वेशाम, चाहे उनके भक्त हों चाहे आत्मवान हो, जब शरण में आते हैं उनकी है, तो आत्मनि आत्मद आत्मतेव, वो अपने को ही देते हैं और चूंकि वे आत्मा ही हैं, है ना, अपने अलावा और कुछ उसमें उनमें है ही नहीं अपने अलावा, है ना। तो बाकी जो देवता लोग हैं तो भौतिक प्रकृति से उनका संबंध होता है, भौतिक प्रकृति में भी वो जो है कुछ सुख प्राप्त करते हैं, तो वो कुछ भौतिक चीज़ें देते हैं, लेकिन भगवान भौतिकता में तो कोई सुख प्राप्त करते नहीं, वो तो आत्मा ही हैं और वो पूर्ण रूप से आत्मा का ही अपना ही आस्वादन करते हैं, इसलिए आत्मद आत्मदेव, चूँकि वे आत्मा ही हैं केवल आत्मा है, तो अपने को ही वो दे देते हैं, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान बलि महाराज के द्वारपाल इसलिए नहीं बने कि उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया था, वरन इसलिए कि वे प्रेमी के रूप में उच्च पद सिद्धि प्राप्त कर चुके थे। तो ये प्रभुपाद का एक जो वाक्य है, इसी पर ही हम विचार करें कि इसमें कितनी गहराई है। तात्पर्य यहीं पर है, समाप्त हो गया है, बल्कि यहाँ बड़े आश्चर्य की बात, अनुवाद लंबा है और तात्पर्य छोटा है, छोटा है तात्पर्य। तात्पर्य केवल एक वाक्य का है, और जबकि अनुवाद में कई वाक्य मिले हुए हैं, है ना। तो ऐसा भी कभी कभी होता है, लेकिन इसमें बड़ी गहराई है। प्रभुपाद क्या लिखते हैं, श्री भगवान बलि महाराज के द्वारपाल इसलिए नहीं बने कि उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया था। अब भगवान द्वारपाल बन गए बलि महाराज के, तो क्या हुआ, अपने को ही दे दिया, उनके पास और कुछ है ही नहीं, अपने सेवा कुछ है ही नहीं, तो अपने को ही दे दिया, तो बलि महाराज के द्वारपाल बन गए, है ना। अगर जो है कोई बहुत बड़ा राजा है, अगर प्रसन्न हो जाए आपकी सुरक्षा के लिए, तो वो जो है कुछ गार्ड दे गए आपको, आपकी सुरक्षा के लिए बहुत से सिक्योरिटी लगा देगा, है ना। भगवान के पास कुछ नहीं है, वो स्वयं है, तो स्वयं ही अपने को दे देते हैं कि मैं ही तुम्हारा द्वारपाल, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि श्री भगवान बलि महाराज के द्वारपाल इसलिए नहीं बने कि उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया था, उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। तो बलि महाराज ने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया, लेकिन अगर आप इस तरह से देखें कि सब कुछ अर्पित कर दिया, देन वो क्या था, क्या वस्तु थी जो सब कुछ अर्पित कर दिया, तो भूमि थी, है ना। और वो भूमि तीनों लोक, मान लो तीन लोगों की जो है संपत्ति है, है ना, ये भूमि अर्पित कर दी, तो भगवान के लिए क्या है, कुछ भी नहीं है। वो भगवान के लिए तो कुछ भी नहीं है, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी है, तो उनके लिए बलि महाराज की जो दी हुई वस्तु है क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन भगवान ये नहीं देख रहे हैं कि क्या दिया, भगवान ने बलि महाराज का क्या देखा कि सब कुछ इसने अपना दिया, तो मुझे अपना सब कुछ देना है। कृष्ण जो है इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, गणना करते हैं, है? तो तुमने क्या दिया ये भगवान नहीं देखते, तुमने क्या दिया, भगवान क्या देते, तुमने अपना सब कुछ दिया है तो मैं भी अपना सब कुछ दे दूं। तो बलि महाराज ने अपने आप को ही दे दिया, उनका जो है जितना सर्वस्व था उसमें भी पूरा उनके तीन पैर नहीं हुए। बलि महाराज ने अपनी तीनों लोगों की भूमि दी, संपत्ति दी, तो भगवान ने दो पगों में नाप ली, है? तो फिर बलि महाराज ने क्या कहा, बलि महाराज ने कहा कि मेरा वचन जो है झूठा नहीं होगा, मैंने आपको वचन दिया है कि तीन पग भूमि आपकी पूरी करूंगा, तो मैं करूंगा, मैं पूरी तो करूंगा, मेरा वचन झूठ नहीं है, है ना। तो अपने वचन को सत्य कैसे किया, बलि महाराज ने कहा कि अब मैं जो है अपने को देता हूं, तो उसमें आपका एक पग पूरा हो जाएगा। अब बलि महाराज कैसे देखा जाए, तो भगवान के एक पग में कैसे पूरे होंगे, बलि महाराज का कितना आकार है, है? दो पग में तो तीनों लोग नाप लिए। लेकिन यहाँ पर अगर संपत्ति देखा जाए कि आपकी जितनी भी संपत्ति हो आपकी कीमत उससे ज़्यादा है कि नहीं, है? अगर आपकी कोई भी संपत्ति हो, मान लो कोई छीन रहा है, हैं, या मान लो आपके प्राणों को जो है कोई ले रहा है, मतलब हत्या करना चाहे, तो आप क्या कहेंगे कि भाई मुझे छोड़ दो, मेरी पूरी संपत्ति ले लो, क्योंकि आपकी कीमत जितनी भी संपत्ति हो आपकी कीमत उससे ज़्यादा है, है ना। तो बलि महाराज ने इस तरह से बलि वामन देव से तर्क किया कि मेरी जितनी भी संपत्ति है अगर आपके दो पैर में पूरी हुई है, तो मैं दो पैर से भी ज़्यादा हूँ आपके कि नहीं, उससे ज़्यादा हूँ मैं, तो मैं तो एक पैर में अपने को दे रहा हूँ, तो मतलब तीन पग से ज़्यादा हो गया, मैं आपको चार पग से भी ज़्यादा हो गया मेरा, अगर ऐसे देखा जाए, है? तो मेरा वचन झूठा नहीं है, तीन पग मैं आपको पूरा कर रहा हूँ, मैं स्वयं जो है अपने आपको दे रहा हूँ, तो ये बात सही है, है ना। कि चाहे जितनी भी संपत्ति हो आपके, करोड़ों, सौ करोड़, हजार करोड़ की संपत्ति हो, लेकिन आप अपनी कीमत ज़्यादा ही मानते हैं कि मेरी अपनी जान बचाने के लिए आप सब छोड़ दोगे, अपनी अपने जीवन की रक्षा के लिए, तो आपका जो जीवन है वो उससे ज़्यादा कीमती है ना। तो इस प्रकार से बलि महाराज ने भगवान को जो है तीन पग मतलब पूरे किए कि मैं अपना ही जीवन आपको अर्पित करता हूँ। तो बलि महाराज ने अपना जीवन अर्पित किया है ना। तो ये जो है वामन देव जो है मतलब इस बात से प्रभावित हुए कि इसने अपना जीवन दिया तो मैं भी अपना जीवन तुम्हें देता हूँ। यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथा भजामि अहम्। जो मेरे जिस प्रकार से भजन करते हैं मैं उनको उसी प्रकार से भजता हूँ है ना। तो इस तरह से कोई भी नहीं मतलब तैयार होगा, इस तरह से कोई भी तैयार नहीं होगा। कोई बहुत बड़ा राजा हो कुछ भी हो हाँ तो वो ऐसा सौदा नहीं करेगा। कोई करेगा ऐसा सौदा? कितने उनके जो है गुलाम हैं, पूरा जीवन उन्होंने दे दिया राजा की सेवा में है और राजा के लिए मरने के लिए तैयार है। तो राजा क्या कोई ऐसा करेगा कि भाई वो भी अपना जीवन उसको दे? कोई नहीं करेगा ऐसा, कोई ऐसा नहीं करेगा है ना। राजा तो जो है मतलब ये देखता है कि भाई तुमने कितना दिया, हमारे लिए कितना महत्व है उसका। तुमने अपना पूरा जीवन भी दे दिया है तो भी हमारे लिए कुछ उसका महत्व नहीं, आपके जीवन का कुछ भी महत्व नहीं। लेकिन भगवान क्या, भगवान कैसे हैं? भगवान ऐसे हैं तो ऐसा कोई है नहीं, ऐसा कोई नहीं है इस भौतिक जगत में, कोई ऐसा नहीं है, है? जैसे भगवान है। जिसने शब्दार्थ में क्या लिखा है कि आत्मदे बिना हिचक के अपने आप को दे देता है, हिचकते भी नहीं। अगर आप जो है कुछ ऐसा सौदा करेंगे तो सोचेंगे ये क्या हो रहा है, मुझे क्या करना है, मुझे करना चाहिए मुझे नहीं करना चाहिए, आप हिचकेंगे कि पूरे जीवन का सौदा कर रहा हूँ वही करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या करना क्या नहीं करना, बड़ा इसमें जो है विचार करना पड़ता है। भगवान को कोई विचार नहीं करना पड़ता है, बिना हिचके वो देखते तो ऐसा सौदा जो है केवल भगवान के साथ ही होता है और किसी के साथ नहीं होता है। तो ऐसे जो है भगवान, इसलिए कभी भगवान को निर्गुण कहा जाता है कि ये निर्गुण है। तो निर्गुण का अर्थ जो है जो मूर्ख लोग हैं वो निकालते हैं उनमें कोई गुण नहीं है, भगवान को लेकिन निर्गुण का अर्थ दूसरा अर्थ यह है निर्गुण का कि उनके गुण जो है किसी में भी सिद्ध नहीं हो सकते, किसी में भी ऐसे गुण की कल्पना भी नहीं हो सकती, ऐसा गुण किसी के अंदर नहीं है जैसे भगवान के गुण है, इसलिए उनको निर्गुण कहा जाता है ना। तो यहां पर तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि श्री भगवान बलि महाराज के द्वारपाल इसलिए नहीं बने कि उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया था। तो यहाँ सर्वस्व का मतलब उसकी भगवान ने कीमत नहीं देखी कि आपने क्या वस्तु दी है, आपका सर्वस्व क्या था, आपके पास 2 रुपए थे आपने दे दिए तो 2 रुपए क्या होता है, तुम्हारे पास 2 रुपए थे आपने सबको दे दिया तो 2 रुपए का क्या है, मेरे लिए क्या होता है। तो भगवान ये नहीं वस्तु नहीं देखते हैं, भगवान भाव देखते हैं, भावग्राही जनार्दन। तो भगवान तो भाव ग्रहण करते हैं, तो भगवान का भाव कैसा रहता है कि तुमने अपना सब कुछ दे दिया, ये भगवान का भाव। आपने अपना 100% अपनी सब कुछ 100% आपने दे दिया तो 100% मैं भी आपको देता हूँ, तो भगवान का तो ये भाव है ना। जैसे बताया गया कि भाई 50% अपनी आमदनी जो है भगवान की सेवा में लगाएं। कोई व्यक्ति अगर 50% अपनी आमदनी भगवान की सेवा में लगाता है तो हम जैसे फुल टाइम डिवोटी हैं, वो फुल टाइम डिवोटी नहीं, वो अपना बिजनेस कर रहा है, 50% दे रहा है तो उसमें हमें कोई अंतर नहीं, 50% दे रहा है। और 50% का मतलब क्या है, अगर 100 रुपया है उसके पास उसने 50 रुपये दिए, कि उसके पास 10,000 है तो 5,000 दिए, 1 करोड़ है तो 50 लाख दिए, तो भगवान के लिए बराबर 50%। ऐसा कोई नहीं देखता है ना, लेकिन भगवान का जो है ऐसा सौदा होता है ना। कोई 10% है ना, हम कहते हैं 50% नहीं तो 10% तो कम से कम है, 10% देना चाहिए ना। तो ये जो है भगवान की ये स्थिति है कि वे अपने आप को दे डालते हैं, है ना। तो भगवान जो है बलि महाराज के द्वारपाल बने हुए हैं, द्वारपाल बने हैं ना। तो वैसे देखने में लगता है कि बड़े कठोर हैं भगवान का जो है व्यवहार, कभी कभी देखने में लगता है कि बड़े कठोर हैं, हैं कि बलि महाराज से जो 3 पग की भूमि मांगी और फिर जो है अपना पग बढ़ा दिया, और जो है जब मांगी थी तो शरीर जो है उनका छोटा था, तो बलि महाराज भी मतलब बड़े निराश हो रहे थे कि क्या तुम मांग रहे हो। तो जब मांगे तो छोटा उनका शरीर था, और जब नापने लगे तो अपना शरीर बढ़ा लिया, तो बड़ा अजीब लगता है ना। उस समय बाणासुर जो बलि महाराज का पुत्र था वो बोला भी, वामन देव से बोला कि वामन देव ये आपका जो व्यवहार है ये सही नहीं है, उचित नहीं है। जब आप मांग रहे थे तो आपका जो है आकार छोटा था, आप बोने के आकार में थे, और जब नाप रहे हो तो इतना बड़ा है, ये क्या तरीका है, ये आपका जो है उचित व्यवहार नहीं है। तो वामन देव ने जो है मतलब उसको डांट करके कहा कि तुमको पता नहीं है कि मैं विष्णु हूँ, जब मैं नापता हूँ तो मैं कैसे नापता हूँ, तुमको पता नहीं जब मैं नापता हूँ तो कैसे नापता हूँ। तो उसको निरुत्तर कर दिया है, और बलि महाराज की भी निंदा की कि तुमने पूरा नहीं किया, अपना वचन पूरा नहीं किया, तुमको बंधन प्राप्त होगा। और बलि महाराज बंधन प्राप्त करके भी बड़े प्रसन्न हो रहे, और कहते मैंने तो पूरा कर दिया अपना वचन, भगवान के तुमने अपना वचन पूरा नहीं किया इसलिए तुमको बंधन प्राप्त होगा। और बलि महाराज कहते मैंने वचन पूरा कर दिया, हाँ क्योंकि आपने मुझे बांध लिया तो आपने मेरा जीवन पूरा ले लिया, आप मेरे जीवन पर आपने अधिकार कर लिया, तो मेरा वचन पूरा हो गया, क्योंकि मेरा जीवन मेरी संपत्ति से ज़्यादा ज़्यादा कीमती है, तो मैंने तो चार पक्ष से भी ज़्यादा आपके पूरे कर दिए हैं, आपने तो तीन पग मांगा था। तो बलि महाराज बड़े संतुष्ट, बड़े संतुष्ट, और भगवान बावन डांट रहे हैं, और बलि महाराज बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि हैं नहीं नहीं मैंने पूरा किया, मैंने पूरा किया, है ना। तो वामन देव जो है फिर जब बलि महाराज के समर्पण से संतुष्ट हुए, समर्पण भी बलि महाराज ने किया तो एक प्रसन्नता के साथ किया, कोई ये नहीं कि अब जो है मैं बड़ा जो है उनको शोक हो रहा है कि कहाँ फंस गए हम, पूरा जीवन इन्होंने हमारा ले लिया है, तो बड़ा अब जो है उनको भार लग रहा है कि अब कैसे रहेंगे क्या। बलि महाराज जो है इतने प्रसन्न है कि अब वामन देव का जो है अधिकार मेरे पूरे जीवन में है, तो मैं तो बहुत सुरक्षित हो गया हूँ। बलि महाराज सोचते मैं तो बहुत सुरक्षित हो गया हूँ, पूरा जीवन इन्होंने ले लिया, तो मुझे तो नहीं देना था, मैं तो असुर हूँ, मैं तो असुर हूँ, मुझे तो नहीं देना था, असुर थोड़ी देते हैं अपना, लेकिन इन्होंने बलपूर्वक ले लिया तो बड़ी कृपा की मेरे ऊपर। अगर किसी की भगवान चोरी करें, चोरी करके कुछ खाएं तो कितना सौभाग्य है, हम नहीं देना चाहे तो भगवान चुरा के लें तो कितना सौभाग्य हमारा। हम बलि महाराज कहते छीन लिया आपने मेरा जीवन, छीन लिया मेरा तो बहुत सौभाग्य है, क्योंकि प्रहलाद के कौन है बलि महाराज, पौत्र हैं, पोते हैं, तो प्रहलाद का सत्संग मिलता था इनको, तो असुरों की संगति में भी थे तो उल्टा भी काम करते थे, प्रहलाद जी की संगति में थे तो सीधी बात भी समझते थे, लेकिन वो हो गया क्या, सौभाग्य से सीधा काम हो गया, सीधा काम हो गया, तो बलि महाराज बलि प्रसन्न है। तो भगवान जो है जब देखते हैं कि इतना प्रसन्न है तो भगवान भी प्रसन्न हो गए हैं कि आत्मसमर्पण करके ये जो है प्रसन्न हो रहा है, तो भगवान प्रसन्न हो गए, और जब प्रसन्न हो गए तो बोले आप मैं तुम्हारा द्वारपाल बनूंगा, है ना, तो स्वयं द्वारपाल, है ना। तो ये मतलब आश्चर्य है भगवान का, अर्जुन के जैसे सारथी बने हैं और बलि महाराज के द्वारपाल बने हैं, कितना मतलब आश्चर्य है भगवान का कि अपने को ही दे डाले, अपने को ही दे देते हैं, है ना, कौन देगा अपने को, और विशेष रूप से असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, है ना। तो जैसे गीता में भी भगवान कहते हैं योग क्षेमम वहामि, हम योग क्षेम में स्वयं वहामि, वहामि का मतलब वाहन करता हूँ, जैसे वाहन होता है ना, तो वाहन जो अपने पीठ के ऊपर जो भार ढोए उसको वाहन बोलते हैं, तो भगवान वाहन है, भगवान स्वयं करते हैं योग क्षेम, है ना। तो किसी भक्त ने जो है इसमें आपत्ति की कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, तो उसमें जो है काट दिया वहाँ पर, भाई योग क्षेम करा में हम करा देते हैं, क्योंकि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति होगा तो अपनी आवश्यकता जो है मतलब पूरी करने के लिए वो जो है कुछ है किसी को नियुक्त कर देगा कि भाई इनकी सप्लाई कर दे रहा हूँ, वो स्वयं थोड़ी सप्लाई करेगा, है ना। तो जो है भगवान का ही जो है एक प्रकार से वो शब्द कट गया वहाँ में हम जो काटा था, है ना। तो फिर भगवान स्वयं आए, तो ऐसी कई घटनाएं, ये घटना नहीं कई घटनाएं हैं भक्तों के, और ये सच्ची घटनाएं हैं, कहाँ कहाँ घटनाएं हैं, जगन्नाथपुरी में भी एक अर्जुन आचार्य थे उनके साथ हुआ, जैसे कई घटना है। तो कभी भक्त जो लोग जो है इसमें शंका करते हैं और कुछ है, इसमें खरोंचा खरोंची कर देते हैं भगवान के शब्द में, तो भगवान जो है फिर उसको दिखाते हैं। तो स्वयं भगवान आए लेकर के अपने सिर में रख करके थाल, भोजन की थाल, भोजन की सामग्री, बहुत सामग्री लेके आए और मुंह कटा हुआ है ना। तो उनकी जो पत्नी है वो देखती है कि हाँ ये कितना सुंदर बालक है, किसने भेजा तुमको? बोले उन्हीं पंडित जी ने भेजा मुझे। हैं तो बोले तो तुम्हारा मुंह कैसे कट गया? बोले उन्होंने काट दिया मेरा मुंह, थोड़ा देर हो गई मुझे सप्लाई लाने में तो मुझे उन्होंने मुंह काट दिया। तो बोले ऐसे तो पंडित जी तो ऐसे हैं ही नहीं, हैं, और तुम्हारे ऐसे सुंदर बालक का मुंह काटें कैसे? तो वो जो है उनकी पत्नी है वो जो है बड़े गुस्से में भरी हुई इंतजार करने लगी, अब देखती हूँ कैसे आते हैं, इनसे बात करूँगी कैसे, हैं, कैसे इसका मुंह काटा है। और वो भगवान चले गए, जब वो आए तुमने उस बच्चे का मुंह काटा, तुमने उसको जो है इतना सिर में भार रखा, उसको मुंह भी काट दिया, क्यों तुम ऐसा करते हो? बोले कौन बच्चा? बोले देखो इतना सामान दे के गया है, उसका मुंह काट दिया तुमने। तब उनको समझ आया, ओ हो, मैंने जो है वो भगवान का शब्द जो काटा है वो उनका उनके मुंह में प्रहार हो गया है, उनका मुंह में आघात हो गया है। तो वो फिर जो काटा था उसको तो नहीं कर सकते थे, पूरी गीता में वहां में हम वो लिखते रहे। तो ये भगवान के गुण ऐसे कहीं नहीं, किसी के अंदर ऐसे गुण नहीं। तो यहाँ पर जो प्रभुपाल लिख रहे हैं कि बलि महाराज के द्वारपाल इसलिए नहीं बने कि उन्होंने सर्वस्व अर्पित कर दिया। तो सर्वस्व का दो अर्थ होता है ना, सर्वस्व का दो अर्थ होता है, एक तो सर्वस्व भाव में होता है, तो भगवान भाव देखते हैं कि अपना सब कुछ दे दिया, तो वो वस्तु नहीं देखते, भगवान वस्तु ग्राही नहीं है, वस्तु ग्रहण नहीं करते, भाव ग्रहण करते है ना। अपना सर्वस्व दिया तो भगवान ये नहीं देखते कि क्या सर्वस्व में क्या दिया, तुमने अपना सब कुछ दिया, हाँ मान लो फटा कम्बल था तुम्हारा, वही सर्वस्व दे दिया, तो क्या उसकी क्या कीमत है? भगवान ही नहीं देखते कि क्या कीमत है तुम्हारे सर्वस्व की, भगवान भाव देखते हैं, अपना सर्वस्व दे दिया इसने है, तो फिर मुझे भी अपना सर्वस्व देना। तो भगवान तो भावग्राही जनार्दन, वस्तुग्राही नहीं है, वस्तु नहीं देखते कि क्या आपने आपने वस्तु दी है ना। तो प्रभुपाद ये भी कहा करते थे कि भगवान ये नहीं देखते कि आप उनको क्या दे रहे हैं, भगवान देखते हैं आप अपने पास क्या रखे हुए हैं, वो देखते हैं, आपने अभी अपने पास क्या रखा हुआ है वो देखते हैं है ना। आपने मान लो 50 लाख दिए और 100 करोड़ आपका जो है बैंक बैलेंस है, तो भगवान क्या देखते हैं, हैं, क्या दिया तुमने है ना। और किसी पर 2 रुपए थे और 2 रुपए दे दिए, भगवान के सब कुछ इसने सब कुछ दे दिया। तो 2 रुपए वस्तु नहीं देखते हैं कि कीमत क्या है, सर्वस्व की कीमत क्या है, भगवान देखते हैं भाव है। तो भाव ग्राही जनार्दन, भगवान भाव ग्रहण करते हैं है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद एक तो अनुवाद में नारद जी की बात बताते हैं कि नारद जी के हाथों में बिक जाते हैं भगवान, नारद जी के हाथों बिक गए। तो श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में वर्णन आता है कि नारद जी को जो है जब भगवान ने कृपा की तो अपनी वीणा दी, नारद जी को अपनी वीणा प्रदान की। तो नारद जी कहते हैं कि मुझे भगवान ने वीणा प्रदान की है और जब मैं वीणा में उनका जो है गुणगान करता हूँ तो बुलाए जैसे आते हैं, मेरे पास आते हैं जैसे बुलाए हुए। तो मतलब भगवान की सेवा जो है नारद मुनि के प्रति कैसी है, फुल टाइम सेवा, 24 घंटे की सेवा, ये कुछ 24 घंटे का नौकर होता है ना, तो जब बुलाओ तब आ जाए। तो नारद जी जो है देव दत्ताम इमाम वीणाम, नारद जी कहते हैं भागवत के पहले स्कंद व्यास जी को बताते हैं कि मेरे पास जो है भगवान की दी हुई जो वीणा है इसमें जब मैं उनका गुणगान करता हूं तो बुलाए जैसे आते हैं। तो भगवान बुलाए जैसे आते हैं। उनका ऐसा नहीं है, है कि फिर जो है वो कुछ मैसेज भेजे कि नहीं अभी नहीं आऊंगा, कल आऊंगा, परसों आऊंगा, अभी मैं बिजी हूं है। जैसे कोई व्यक्ति बिल्कुल नौकर है, बिल्कुल तैयार है आपकी सेवा के लिए तैयार है, हैं, जैसे बुलाएं वैसे ही आ जाए। तो भगवान ऐसे बुलाए जैसे आते हैं नारद जी के सामने है ना। और दूसरे क्या है, आत्मवताम, तो आत्मवान लोग हैं। तो आत्मवान लोग इनका जो है उदाहरण दिया प्रभुपाद ने, कौन? चार कुमार। तो चार कुमार जो है हृदय में ध्यान करते हैं, तो हृदय में भगवान हमेशा उपस्थित हैं और आनंद लेते रहते हैं, वो हमेशा आनंद लेते रहते हैं तो भगवान जो है हृदय में भी जो है जब दर्शन देते हैं तो हमेशा आनंद प्राप्त करते हैं, चार कुमार हमेशा आनंद प्राप्त करते हैं, है ना। तो एक स्थिति ऐसी है भक्तों की कि हृदय में भगवान का ध्यान करते हैं तो हमेशा उनसे आनंद प्राप्त करते हैं। दूसरे भक्त कैसे होते हैं जो कि बाहर भगवान का जो है अनुभव करते हैं बाहर से, और बाहर से भगवान आते हैं। तो एक ये स्थिति है। तो दो प्रकार के भक्त हैं, है ना। अब विचार करना है कि कौन स्थिति ज्यादा ऊंची है, किस स्थिति ज्यादा ऊंची है। तो नारद जी जब याद करते हैं तो भगवान ऐसे आते हैं जैसे बुलाए हुए जैसे आए, है ना। और चार कुमार हैं तो हृदय में ध्यान करते हैं तो हृदय में भगवान हमेशा मौजूद रहते हैं। तो कौन सी स्थिति ज्यादा ऊंची है? नारद जी की स्थिति ज्यादा ऊंची है। नारद जी की स्थिति ज्यादा ऊंची है जो कि भगवान को बाहर देखते हैं और बाहर जैसे बुलाए हुए जैसे आते हैं, है ना। ये भगवान की लीलाएं हैं जो भक्तों के साथ भगवान करते हैं, वो लीलाएं, इनमें ज्यादा आनंद है। हृदय के अंदर भगवान हैं और उनकी अनुभूति करते हैं तो वे तो आनंद है, लेकिन उससे करोड़ों गुना आनंद ज्यादा आनंद इसमें है भगवान के साथ संबंध बनाना, भगवान के साथ अपना संबंध बनाना, है जो सेवक और स्वामी जैसा संबंध बनाना या मित्र का संबंध बनाना, है या पुत्र, भगवान को पुत्र मान लेना। तो ये जो स्थितियाँ हैं बहुत ऊंची स्थितियाँ हैं। तो नारद जी की स्थिति इस दृष्टि से ज़्यादा श्रेष्ठ है कि भगवान जो है बुलाए हुए जैसे आते हैं, है ना। तो जो चार कुमार हैं तो वो जो है ध्यान परायण है, वे अगर भगवान का गुणगान करते हैं तो वो कुछ महिमा का गुणगान करते हैं, भगवान की महिमा ऐसी है, भगवान की महिमा ऐसी है, है। लेकिन नारद जी जैसे भक्त हैं तो वो भगवान का जो गुणगान करते हैं वो उन लीलाओं का गुणगान करते हैं जो भगवान अपने भक्तों के साथ करते हैं। चौथे अध्याय में जो भगवान कहते जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं जो तत्व से जानता है, तो वो भगवान के जन्म कर्मों की चर्चा करता है। हृदय में जो भगवान स्थित हैं उनके जन्म और कर्म नहीं है, लेकिन जो भगवान जब जन्म लेते हैं और कर्म करते हैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए तो वो ज़्यादा इसमें रस है, इसमें ज़्यादा आस्वादन है, है ना। तो ये जो है आज के श्लोक में तीन उदाहरण दिए गए हैं। एक तो नारद जी का उदाहरण दिया गया है, दूसरा चार कुमारों का उदाहरण दिया गया है, और तीसरा उदाहरण दिया गया बलि महाराज का, है ना। तो अगर वैसे देखा जाए भक्ति में, मतलब जो भगवान की निकटता जो श्रेष्ठता है, तो तीनों में क्या क्रम है, सबसे जो कम है वो कौन है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इन तीनों में किस तरह से आप क्रम बनाएंगे? सबसे कम किसका है? चार कुमारों का सबसे कम है, फिर उससे ज़्यादा नारद जी का, उससे ज़्यादा बलि महाराज का, है ना। जिस प्रकार से क्रम बनता है, और सौभाग्य जो है मतलब किसी का कम नहीं है, स्थिति दिव्य है, सबकी स्थिति दिव्य है। इस श्लोक में जो हिंदी पद्यानुवाद लिखा है विष्णुप्रिया देवी ने, उसको पढ़ के सुना रहा हूँ। हिंदी कविता लिखी है। सब जीवों के आत्मस्वरूप जो सबके अंतर में बसें, निज संयमी भक्त और प्राणियों को निज स्वरूप ही वे दे दें, सर्वात्मा श्री हरि को किया दान यह आत्मभाव से, केवल भोग विलास ही उसका फल ना हो सके। तो भोग विलास नहीं देते भगवान, भगवान जो है भोग विलास नहीं देते हैं। बाकी लोग जो है भोग विलास देते हैं, चलो तुम भोग विलास करो, है ना। और वो अंतमंतु अंतवत्तु फलम ते साम तद्भवति अल्पमेध साम, वो अंतमान होता है, है ना। लेकिन भगवान जो देते हैं वो फल कैसा होता है? अविनाशी होता है। भगवान जो फल देते हैं वो अविनाशी, है ना। भगवान जो अपने को दे देते हैं तो अविनाशी फल है। भगवान किसी के पुत्र बन जाएं तो कैसे पुत्र बन जाते हैं? कभी विनाश नहीं होगा, हमेशा आप भगवान के पिता हैं या माता हैं, भगवान हमेशा आपके पुत्र हैं और हमेशा पुत्र रहते हैं। पुत्र बड़ा नहीं होता कभी, माता पिता बूढ़े नहीं होते कभी। तो ऐसे भगवान संबंध जो भी बनाते हैं, तो भगवान का जो है मतलब जो देना होता है वो ऐसा नहीं होता कि फिर किसी से आपको मांगना पड़ेगा। भगवान कुछ देंगे आपको तो फिर ऐसा नहीं देंगे कि फिर आगे कुछ अभाव हो, कुछ कमी हो और आप फिर सोचें कि अब मैं किसी और के पास जाऊं, हाँ ये कमी है, इससे मांगू उससे मांगू। अब कुछ नहीं है, उसके आगे कुछ नहीं है, आपको कुछ मांगना नहीं पड़ेगा किसी से, भगवान देंगे तो ऐसा देंगे, है ना। तो ये चीज़ जो है, जैसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, ये सबको जो है कृष्ण भावनामृत दे रहा है, ये संदेश दे रहा है, भगवान का संदेश दे रहा है। तो ये ऐसी चीज़ है जो हमेशा के लिए अभाव दूर हो जाएंगे। लेकिन लोग क्या करते हैं, गरीबों को भोजन कराते हैं, तो गरीबों को भोजन कराए फिर भूख लगेगी तो कहाँ तक भोजन कराएंगे, सबको भोजन करा नहीं सकते, है ना। अच्छी बात है आप गरीबों को भोजन कराते, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कृष्ण भावनामृत अगर प्रदान करते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए उनकी छुट्टी, है ना। तो भगवान के साथ अगर संबंध आपने जोड़ दिया तो हमेशा के लिए वो जो है सुखी हो जाता है, वो दुखों से मुक्त हो जाता है, है ना। तो ये भगवान का जो है ऐसा कार्य है, भगवान का ऐसा सौदा होता है। तो अगर आप अपना पूरा जीवन दें भगवान को तो भगवान अपने आप को ही दे देते हैं, है ना। उनका जो है अपना ही पद प्रदान करते हैं, सेवे स्वस्य पदस्य दातारी स्वरे नारायणे तिष्ठति। मुकुंद माला में जो महाराज कुलशेखर ये स्तोत्र लिखते हैं, मुकुंद माला स्तोत्र है, नाथे नहा पुरुषोत्तमे त्रिजगताम एकाधिपते चेतसा। तीनों लोगों के एकमात्र अधिपति हैं हमारे नाथ पुरुषोत्तम हैं। सेव्य स्वस्य पदस्य दातारी स्वरे नारायणे तिष्ठति। तो सेव्य स्वस्य पदस्य अपना ही जो है पद प्रदान करने के लिए तैयार हैं। नाथे नहा पुरुषोत्तमे त्रिजगताम एकाधिपते चेतसा सेव्य। अगर मन से भी सेवा करो आप, मन से भी सेवा करो आप, तो भी अपना पद देने के लिए तैयार हैं। और भगवान तो इतने तैयार हैं अपने को देने के लिए, लेकिन यम कंचित पुरुषाधमम कतिपय ग्रामेशम अल्पार्थतम। लेकिन हम लोग जो है कितने मूढ़ हैं और कितने दुष्ट हैं, जो कि किसी को ढूंढते हैं मांगने के लिए कि इससे हम मांगे। कुछ गांव का कोई अधिपति होता है, कुछ गांव का स्वामी होता है, तो उससे हम कुछ जो है मांगने के लिए ढूंढते हैं कि उससे मांगूं जा करके। अल्पार्थम, थोड़ा सा ही देगा वो थोड़ी देगा, अपने संपत्ति थोड़ी देगा, वो थोड़ा सा देगा। अल्पार्थम सेवा है मृगया महे, और हम ढूंढ रहे हैं और उसकी सेवा करें, उसकी सेवा करें, इसकी सेवा करें, उसकी सेवा करें, कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए। जैसे भिखारी लोग हैं, गाड़ी साफ करते हैं, आएंगे तुरंत शीशा साफ करेंगे, और जो गाड़ी वाला है चला के चला जाएगा, पैसे भी नहीं देगा उसको। शीशा साफ करता है वो, बड़ी जल्दी शीशा साफ करता है, हैं, और उस गाड़ी वाला निकल जाता है, या एक पैसा दे देगा, कुछ सिक्के दे, एक रुपया दे देगा, चला जाएगा। तो वही जो है मूर्खता। भगवान की सेवा छोड़ करके भगवान अपना पद देने के लिए तैयार है। तो हम मूढ़ा वराका भाई, हम कितने मूढ़ हैं, हम कितने वराका हैं, वराक दुष्ट। तो ये हमारी जो है मूर्खता है, इतनी बड़ी मूर्खता है। तो यहाँ जो है आज के श्लोक में ये संदेश मिल रहा है, आत्मतैव वो जो है अपने को ही देते हैं, उनके पास जो है वही संपत्ति है, उनकी जितनी संपत्ति है वैकुंठ में अपार संपत्ति है, उसका सुख नहीं प्राप्त करते, वो अपने भक्तों का सुख प्राप्त करते हैं, भक्तों से जो उनको भक्ति का रस मिलता है उसी का आस्वादन करते हैं, इसलिए वो जो है अपने को ही दे देते हैं। और अपने को दे देते हैं फिर वैकुंठ उनका तो क्या है, वो तो मिलेगा ही, वो अपने को ही दे देते हैं। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, नाहम वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता, तो वैकुंठ में मुझे सुख नहीं मिलता। अब सब प्रकार का सुख तो वैकुंठ में, लेकिन भगवान को सुख नहीं मिलता वैकुंठ में। कहाँ सुख मिलता है, मद्भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ मेरे भक्त मेरा गान करते हैं। भगवान को लक्ष्मी जी के साथ भी वो सुख नहीं मिलता, जितना सुख मिलता है भक्तों की कथा सुन करके, भक्तों के द्वारा अपनी कथा सुनते हैं भगवान, तो जितना सुखी होते हैं उतना सुख उनको लक्ष्मी जी के साथ भी नहीं मिलता। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि, मैं वहाँ पर रहता हूँ, वैकुंठ में तो भगवान रहते ही हैं, उनको वो सुख नहीं मिलता वैकुंठ में, जो सुख कहाँ मिलता है? भक्तों की कथा में, जहाँ भक्त लोग उनका गुणगान करते वहाँ मैं रहता हूँ, है ना। तो भगवान का गुण, ऐसे भगवान को छोड़ करके कोई किसी का गुणगान करता है तो कितना मूर्ख है। आप किसी का गुणगान करते उसको पता भी नहीं चलता आप उसका गुणगान करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं उनको जो है तुरंत पता चलता है, तुरंत आते हैं। तो भगवान स्वयं आते हैं, उनको वैकुंठ में आनंद नहीं आता। योगी नाम हृदय नाम है, योगी लोग ध्यान करते हैं उसमें भी उनको सुख नहीं मिलता। रहते तो योगियों के ध्यान में दर्शन देते हैं, तो वो सुख उनको नहीं मिलता है। जो सुख उनको कहाँ मिलता है? जहाँ उनकी कथा होती, मत भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं। तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद मैं वहाँ पर रहता हूँ, मतलब वहाँ पर ज़्यादा उनको आनंद प्राप्त हो, ज़्यादा सुख प्राप्त होता है। इतना सरल कार्य है और इतनी बड़ी प्राप्ति होती है। भगवान का गुणगान करने में क्या दिक्कत है? हमें दोहराना ही तो है, वही शब्द तो दोहराने हैं, क्या दिक्कत है? उसी में जो है मतलब भगवान आ जाएं, भगवान ही जो है मतलब स्वयं आनंद लें, सुखी हों, तो कितना बड़ा सुख, इसमें कितना बड़ा सुख है ना। तो ये समझना है ना। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा? हाँ जी बोलिए।
जैसे आपने आज बताया कि बलि महाराज का भगवान ने सर्वस्व दे दिया, और यही हम देखते हैं कि सुदामा को सर्वस्व दे दिया, तो ये दोनों एकदम जो है विपरीत उदाहरण हमारे सामने जो है भागवतम में आते हैं। तो ऐसा अभी पीछे भागवतम कथा में सुन रहा था कि भगवान अपने भक्तों में बिल्कुल यशमान अहंकार नहीं देखना चाहते, तो कई दफा संपत्ति के होने से भी अहंकार होता है और कई दफा संपत्ति के न होने से भी अहंकार हो जाता है। देखो मेरे पास कुछ नहीं है, तो जिसके पास कुछ नहीं है भगवान उसको रख देते हैं, जैसे सुदामा को रख दिया और बलि महाराज का सब कुछ ले लिया, तो इसके ऊपर मेरा कुछ।
जहां तक सुदामा की बात है तो भगवान ने विचार किया था उनकी पत्नी के बारे में कि ये तो संतुष्ट है, इसे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इसकी पत्नी जो है चाहती है, और पत्नी भी चाहती है तो उसकी भी भावना गलत नहीं है, वो अपने पति की सेवा करना चाहती है, है ना। तो उसके अंदर पति, और पति जो है अगर पूरी तरह से कृष्ण के प्रति समर्पित हो और पत्नी अपने पति में समर्पित हो तो आदर्श स्थिति है। तो भगवान जो है सुदामा को आवश्यकता नहीं है, वो निर्धन में ही वो संतुष्ट हैं सुदामा जी, लेकिन उनकी पत्नी जो है आशा करती है तुम्हारे मित्र हैं तुम जाओ हैं। और सुदामा जी कहते मैं वहाँ जाके मांगूंगा नहीं, मुझे मांगना अच्छा नहीं लगता। ठीक है तुम नहीं मांगना, वो अपने आप देंगे। तो भगवान ने मतलब ये विचार किया कि इसकी तो इच्छा है ही बिल्कुल मांगने की, ये संतुष्ट है ना, लेकिन इसकी पत्नी की इच्छा है वो इच्छा भी गलत नहीं है, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति नहीं करना चाहती, अपने पति की सेवा में चाहती है कि मतलब हो। तो भगवान ने मतलब ऐसा दिया, और जब भगवान ने दिया तो योगक्षेम, यहाँ पर भी समझना है योगक्षेम दोनों, मतलब दिया भी और सुरक्षा भी दी। ऐसा नहीं कि 10 करोड़ रुपए दे दिए और फिर कोई आगे खून कर दे और उसका भी जीवन संकट में पड़ जाए, छीन लेगा और हत्या कर देगा, तो सुरक्षा के साथ दिया है। सुदामा के हाथ में कुछ नहीं दिया, जब वहाँ गए तो पूरी सुरक्षा के साथ जो है उनकी पूरी महल सुरक्षा गार्ड सैनिक सब पूरी सुरक्षा भगवान ने जब दिया, तो योग क्षेम वहाँ में, है ना। तो यहाँ पर जो है बात यही है कि सुदामा जो है निर्धनता में संतुष्ट है, तो भगवान उनको निर्धन ही बनाते हैं। वही सुदामा शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी के रूप में चैतन्य लीला में थे, तो वो भी जो है मतलब बिल्कुल निर्धन ही थे। तो भगवान तो देना चाहते हैं उन भक्तों को जो जिनको अगर चाहिए तो भगवान देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर भगवान कोई भक्त है निर्धनता में ही अगर संतुष्ट रहता है, निर्धनता में ही अगर चाहता है तो निर्धन रहे। तो भगवान चैतन्य शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी के घर में भी आए, उनके हाथ का बनाया हुआ भोजन किया, खाया, उनके घर में सोए। तो ये सब जो है भगवान के संबंध है। तो भगवान अपने भक्तों को जो है उसी स्थिति में रखते हैं जिस स्थिति में वो रहना चाहते हैं। अगर अगर वो चाहते हैं धन संपत्ति और वो भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं, जैसे युधिष्ठिर महाराज, युधिष्ठिर महाराज चाहते हैं कि धन संपत्ति मिले, वो राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं, राजसूय यज्ञ करके दिखाना चाहते हैं कि पूरी दुनिया देखे कि हमारे पास इतनी धन संपत्ति है, है? क्यों? क्योंकि हम कृष्ण के भक्त हैं, हम कृष्ण के भक्त हैं, हमारे पास इतनी धन संपत्ति है, तो तुम भी कृष्ण के भक्त बनो, तुम्हें भी संपत्ति मिलेगी। तो ये भाव था, तो भी सही भाव है। तो भगवान जो है भक्त के हर भाव में जो है संतुष्ट होते हैं, जब भक्ति का भाव होता है। तो युधिष्ठिर महाराज चाहते हैं कि हमारे पास ये संपत्ति है और हम दिखाएं कि ये होता है, है ना? तो प्रभुपाद ने भी मतलब दिखाया कि हमारे इतने अच्छे मंदिर हैं, हमें बड़े अच्छे मंदिर बनाने हैं, हम तो पेड़ के नीचे भी रह सकते हैं, लेकिन कौन आएगा सुनने के लिए? हम तो भगवान का संदेश दे रहे हैं, कौन आएगा सुनने के लिए? हमारे पास इतना अच्छा भवन है, मंदिर है, तो लोग आएंगे, अरे इनके पास तो इतना अच्छा भवन है, इतना अच्छा मंदिर है, तो भाई इनको सुनो, कुछ ये बताएंगे तो कुछ अच्छी बात बताएंगे हमारे काम की है। तो प्रचार के लिए हमें जो है अच्छे कपड़े पहनना है। प्रभुपाद कहते हैं आप फटे कपड़े पहने के जाओगे प्रचार में तो लोग क्या सुनेंगे, आप अच्छे कपड़े पहन के जाओ, उससे जो है लोग कहेंगे हाँ भाई ये भी मतलब ऊंचे दर्जे के लोग हैं, इनकी बात सुनना चाहिए। तो पढ़ाई लिखाई भी कोई इस्तेमाल नहीं, पढ़ाई लिखाई अगर आपकी है तो उससे जो है पढ़े लिखे लोग आकर्षित होंगे, भाई इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति है, हरे कृष्ण का भक्त बन गया है, तो इसका मतलब कुछ है इसमें, है कि इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद भी भक्त बन गया है, तो ये भी प्रचार में बड़ा काम करता है। तो बिना पढ़े लिखे हैं ये हरे कृष्ण के भक्त बन गए, क्योंकि बेकार थे ये, अशिक्षित थे, बेकार थे, इसलिए भक्त बन गए हैं। तो क्या हम क्यों बने भक्त? अरे इतना पढ़ा लिखा है और भक्त बन गया, इसका मतलब है इसको कोई बहुत ऊंची चीज मिली है, इसलिए पढ़ाई लिखाई उसके बाद भी इतना बड़ा भक्त बन गया। तो इससे भी जो है प्रचार होता है। तो प्रचार के लिए जो है सब कुछ है, तो इसमें मतलब अहंकार की बात ही नहीं है। रूप गोस्वामी ने मना नहीं किया कि मेरा नाम चैतन्य चरितामृत में ना आए, लेकिन लोकनाथ गोस्वामी ने मना किया मेरा नाम चैतन्य चरितामृत में ना आए। तो दोनों की भावना शुद्ध है। आप ये नहीं कह सकते कि लोकनाथ गोस्वामी जो है इतने शुद्ध हैं कि वो नहीं चाहते चैतन्य चरितामृत मेरा नाम आए, और रूप गोस्वामी ने तो मना नहीं किया। तो रूप गोस्वामी ने मना नहीं किया, उनका नाम आएगा तो लोग समझे कि हाँ भाई इतने पढ़े लिखे, इतने धनी व्यक्ति भक्त बन गए, तो हमें भी भक्त बनना चाहिए। क्यों? तो भक्तों की जो भावना है वो भगवान जानते हैं, भावग्राही जनार्दन। हमें लगता है कि नहीं नहीं इनमें वो कमी है, इनमें तो वो गुण नहीं जो इनमें है, इनके अंदर जो गुण है वो भगवान वो देख रहे हैं, इनके अंदर जो गुण है वो भी भगवान देख रहे हैं। हाँ जी माता जी, भगवान ने सुतल लोक दिया वहां का जो है उन्होंने, और असुरों के मतलब वो शासन करेंगे, असुरों के शासन करेंगे, असुर लोग तो नहीं मानेंगे भक्ति, और बलि महाराज तो भक्त हैं, तो असुर लोग तो इनको राजा नहीं मानेंगे। तो भगवान ने क्या किया, मेरा चक्र रहेगा तुम्हारे साथ में, कोई उल्टा बोलेगा असुर उठाएगा कट, बड़ी महाराज इस तरह से चक्र तैयार रहता है, कोई अगर सिर उठाए अपना जवान लड़ाए कट। तो भगवान ने इस तरह से दिया, और अगले मनमंत्र में इंद्र भी बनेंगे। इस मनमंत्र जितना मनमंत्र रह गया है अभी तो 18 करोड़ साल इस मनमंत्र के रह गए हैं, है ना, और पहले बड़ी महाराज को स्वतंत्र लोक दिया था तो 18 करोड़ साल से ज्यादा, तो ये मनमंत्र का उनको जो है स्वतंत्र लोक में सुख है, और अगले मनमंत्र के वो इंद्र भी बनेंगे, वो 30 करोड़ साल का मनमंत्र वो उस इंद्र भी बनेंगे, भगवान ने ये भी दे दिया। लेकिन उनके अंदर कोई ऐसी इच्छा नहीं है, लेकिन अगर वो अगर भगवान देते हैं उनको संपत्ति तो भी संतुष्ट हैं, नहीं देते तो भी संतुष्ट हैं। तो ऐसे में भगवान संपत्ति देते हैं। कोई व्यक्ति संपत्ति नहीं चाहता है तो फिर भगवान क्या करें। ठीक है भाई, लेकिन कोई अगर संपत्ति में भी संतुष्ट है, विपत्ति में भी संतुष्ट है, तो भगवान संपत्ति देते हैं। ठीक है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।